नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। रॉकस्टार जेम्स का बांग्लादेश के फरीदपुर में होने वाला कार्यक्रम झड़प के बाद रद्द, हिंसा में 25 लोग घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए रविवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश बना, अफ्रीकी संघ ने विरोध जताया। और महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत की 3-0 की अच्छी बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह शहर में हाल ही में एक हिंदू युवक की जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करता है।
हाल ही में हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो, और इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा बताकर इस दरकिनार नहीं किया जा सकता।
श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करता है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होने वाले हैं।
जहां तक बांग्लादेश में चुनाव का सवाल है, वहां पर हम लोग चाहते हैं कि वहां स्वतंत्र चुनाव हो, वहां निष्पक्ष चुनाव हो और वहां एक समावेशी चुनाव हो, तो यही हमारा पक्ष है जहां तक चुनाव के मामले की बात है।
इस बीच बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले जमात ए इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के बीच संभावित सीट बंटवारे पर चर्चा से एनसीपी के भीतर बढ़ते मतभेद सामने आए हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की है कि जमात के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा जारी है और पार्टी शुरुआत में कम से कम 50 निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के समायोजन की मांग कर रही है। हालांकि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और अगले कुछ दिनों में अंतिम निर्णय आने की संभावना है। बांग्लादेश में रॉक संगीत के दिग्गज कलाकार जेम्स बाउल के संगीत समारोह में कल रात फरीदपुर जिला विद्यालय की 185वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान हिंसा भड़कने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। घटना में 25 लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकांश छात्र थे। 2 दिन के कार्यक्रम के समापन समारोह में विद्यालय परिसर में शुरू होने वाला ये संगीत समारोह उस समय रद्द कर दिया गया जब कुछ बाहरी लोगों ने प्रवेश से मना किए जाने के बाद जबरन परिसर में घुसने का प्रयास किया और ईंट पत्थर फेंके। इसके बाद विद्यालय के छात्रों के साथ झड़प शुरू हो गई। झड़प में कई छात्र घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी वार्ता के लिए वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कीव में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि यह बैठक रविवार को होगी। एक रिपोर्ट।
यूक्रेन के साथ बातचीत में अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार की गई 20 सूत्री शांति योजना के साथ साथ यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 20 सूत्री योजना 90% पूरी हो चुकी है। इस दौरान आर्थिक समझौते पर भी चर्चा होगी और यूक्रेनी पक्ष क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाएगा। एक अमरीकी समाचार संगठन को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें जल्द ही रूसी नेता से बात करने की उम्मीद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कल पत्रकारों को बताया कि रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव की हाल ही में फ्लोरिडा में अमरीकी दूतों से मुलाकात के बाद से रूस अमरीकी प्रतिनिधियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। अमरीकी राष्ट्रपति 24 फरवरी 2022 को शुरू यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए देवेंद्र त्रिपाठी।
और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्लोरिडा में होने वाली बैठक से ठीक एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज तड़के भीषण हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और कई क्रूज मिसाइलें दागी। कीव में कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई गईं और आसपास के इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। जापान प्रतिनिधि मंडल ने वर्ष 2026 के लिए रिकॉर्ड 58 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक के रक्षा बजट को मंजूरी दी। इस बजट से जापान क्रूज मिसाइलों और ड्रोन हथियारों से जवाबी हमले की क्षमता और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बजट का मसौदा 2025 की तुलना में 9.4% अधिक है और यह जापान के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक वार्षिक हथियार खर्च को दोगुना करने की 5 वर्षीय कार्यक्रम का चौथा वर्ष है। बजट में ये वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब जापान चीन के साथ बढ़ते तनाव का सामना कर रहा है। जापान के शिजुओका प्रांत में कल शाम एक कारखाने में हुई चाकूबाजी में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मसाकी ओयामा को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि ओयामा का कारखाने से संबंध था और उसने गैस मास्क पहनकर ब्लीच जैसा तरल पदार्थ छिड़का था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहता है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक बताया।
सोमालीलैंड को मान्यता दिए जाने की विभिन्न देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। सोमालिया के प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे ने इस मान्यता को इसराइल का सोमालिया की संप्रभुता पर जानबूझकर किया गया हमला बताया है। उन्होंने कहा कि सोमालिया इसे स्पष्ट और निर्भीक रूप से खारिज करता है। इस बीच मिस्र ने इसराइल की घोषणा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोमालिया, तुर्की और जिबूती के अपने समकक्षों से अलग अलग फोन पर बात की। विदेश मंत्रियों ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की और इसराइल की घोषणा को खारिज कर दिया। मिस्र के विदेश मंत्रालय के एक बयान में चारों देशों ने सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि संप्रभु राज्यों के कुछ हिस्सों की स्वतंत्रता को मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत खतरनाक मिसाल कायम करेगा। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
सीरिया के होम्स प्रांत में अलावी मस्जिद में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 से अधिक घायल हो गए। सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार यह हमला होम्स के वादी अल-दहाब इलाके में स्थित इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान निशाना बनाकर किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विस्फोट मस्जिद के अंदर लगाए गए विस्फोटक उपकरणों के कारण हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सीरिया में मस्जिद में हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों और पूजा स्थलों पर हमले अस्वीकार्य हैं। तुर्की के सुरक्षा बलों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान संभावित हमलों की योजना से जुड़े राष्ट्रव्यापी अभियानों के दौरान आईएसआईएस आतंकवादी समूह के 115 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है। इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जांचकर्ताओं ने ये पता चलने के बाद संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए कि आईएसआईएस के सदस्य साल के अंत की छुट्टियों में तुर्की में हमले करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने देश के विभिन्न हिस्सों में 124 स्थानों पर छापे मारे। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमान ने बंते मिंचे प्रांत के सीमावर्ती गांव में 40 बम गिराए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमले से सार्वजनिक इमारतों को क्षति हुई है। उन्होंने बताया कि थाई सेना ने बंते मिंचे प्रांत की पोईपेट नगरपालिका में नागरिक आवासीय क्षेत्र पर भी गोले दागे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हिंसा को देखते हुए शांति समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का आग्रह किया। जेल में बंद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को क्वालालंपुर उच्च न्यायालय ने अरबों डॉलर के मलेशिया विकास बरहत घोटाले में सत्ता के दुरुपयोग और धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया है। प्रधानमंत्री रहते हुए बड़े पैमाने पर हुई इस गबन में उनकी भूमिका पर न्यायाधीश ने अभी तक नजीब को सजा की घोषणा नहीं की है। भारत ने तीसरे महिला क्रिकेट T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से बढ़त बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। रॉकस्टार जेम्स का बांग्लादेश के फरीदपुर में होने वाला कार्यक्रम झड़प के बाद रद्द, हिंसा में 25 लोग घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए रविवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश बना। अफ्रीकी संघ ने विरोध जताया। और महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत की 3-0 की अजेय बढ़त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।